Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Ambrish Saxena.
Namaskar. Aarthik khabron ke karyakram Market Mantra mein aapka swagat hai. रोज की तरह आज भी हम आपके लिए प्रमुख आर्थिक व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें लेकर हाजिर हैं। प्रमुख समाचारों का हम विश्लेषण भी करेंगे। खास खास खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर्थिक पत्रकार विशाल दहिया। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमरीश जी।
पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं अनुभा रोहतगी।
थैंक यू अमरीश। मेजर एशियन स्टॉक मार्केट्स डिस्प्ले मिक्स्ड ट्रेंड। Industry bodies hail government's decision to exempt critical petrochemicals from customs duty amid West Asia conflict. And Centre directs states and union territories to curb hoarding and black marketing of LPG and other petroleum products.
Asia ke pramukh share bazaron mein mila jula rukh raha. पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल्स पर सीमा शुल्क में छूट देने के सरकार के फैसले का उद्योग संगठनों ने स्वागत किया है और केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने का निर्देश दिया है।
And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
Aur aaj ki pehli khabar. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 2.7% से अधिक और जापान के निकेई में लगभग 1.3% की बढ़त दर्ज की गई। दूसरी ओर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% गिरा। इस बीच सिंगापुर और हांगकांग समेत इस क्षेत्र के अन्य बाजारों तथा यूरोप के बाजार आज गुड फ्राइडे के चलते बंद रहे।
Let's move on to U.S. Markets. Major U.S. indices ended mixed yesterday after pairing earlier losses. Diplomatic signals from West Asia helped calm markets, which had been rattled by comments from the U.S. President Donald Trump ahead of a long holiday weekend. The Nasdaq Composite Index added almost 0.2% and the S&P 500 rose 0.1%, while the Dow Jones Industrial Average dropped over 0.1%. Vishal, a comment from you on the way Asian markets, of course, they were mixed because some markets were closed, of course, European markets were closed, and also what happened in the U.S. markets yesterday. So we're seeing mixed trends.
Well, largely, Anubha, there has to be not much activity day to day because most of the markets are closed. And given what happened yesterday in terms of the narratives,
yes,
and I still call it narratives as far as the West Asia or the Middle East conflict is concerned, because there are a lot of you know, arguments and counter arguments coming in, a lot of statements coming in,
yes,
and unfortunately, the statements on both sides do not match the actions on both sides as well. That is creating a lot of confusion. And when there is confusion, specifically on the geopolitical front, and more so specifically when it is a conflict which we are talking about, that doesn't leave a very good taste in the investor's mouth. And if it's something which the investors are not liking it, that is considered as a very negative sentiment in the right. markets, and that is why the volatility is there. When you're saying the mixed performance in the U.S. markets yesterday were, of course, because the statement released by the Iranian president, Absolutely. Followed by the statement of their own president, that is Donald Trump, and then that being followed by another dinner conversation wherein President Trump's statements were not taken very kindly. Then, of course, a lot of other happenings, yes. Domestically. So for domestically, the U.S. markets, there's not much to hang on to. But today, being the holiday for most of the markets, except KOSPI, if I'm not wrong, and yes. Japan and China. Tomorrow will be, Monday will be the next session. Monday will be really, really important to see. And let's not also forget the fact that there are two more holidays, that is Saturday and Sunday. there are no signs of the war between Iran and versus Israel, U.S. Coming to a early end. There are no signs of talks as well. So let us see how it happens. Right. And of course, Monday is going to be really crucial, not only for Indian markets, but globally, all the markets as well. They will react to what has happened over the weekend,
yes.
An extended weekend, which includes today as well.
Right.
और चलते हैं भारत के शेयर बाजारों का हाल भी जानते हैं. भारतीय शेयर बाजार आज गुड फ्राइडे के कारण बंद हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री, करेंसी और कमोडिटी डेरिवेटिव क्षेत्रों में कोई काम नहीं हुआ. कल घरेलू शेयर सूचकांक 0.2% की बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 185 अंक बढ़कर 73,320 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक बढ़कर 22,713 पर बंद हुआ. क्या कहेंगे विशाल आप, कल रिकवरी थोड़ी दिखाई दी, लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात है या आपको लगता है कि बाजार में स्टेबिलिटी वापस आएगी?
देखिए, मैं तो इसे कहूंगा कि एक ही दिन की बात है, क्योंकि बाजार में स्टेबिलिटी वापस आएगी. उसके लिए सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए. और सब कुछ, मेरा मतलब है कि जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है जिसकी तरफ सबकी नजर है, वहां से कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आने चाहिए. लेकिन एक चीज मैं यहां पर, क्योंकि मैं कुछ आंकड़ों पर नजर डाल रहा था अमरीश जी, और आंकड़ों के लिहाज से मैं श्रोताओं को समझाना चाहूंगा, क्योंकि जब हम इस तरह की वॉलिटिलिटी मार्केट में देखते हैं कि कभी 1,000 पॉइंट नीचे गया तो 500 पॉइंट ऊपर आया, और लगातार 2 दिन तक गिरावट रही, 3 दिन तक गिरावट रही, तो ऐसे समय में थोड़ा सा माहौल गड़बड़ाता दिखता है. लेकिन उसके लिए अगर आप आंकड़ों को और पिछले आंकड़ों को भी देखें तो थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाती है. यानी कि अब इस वक्त हम बात कर रहे हैं ईरान बनाम इसराइल और यूएस में जो लड़ाई चल रही है उसकी, और आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 23-24 दिन से लगभग, जब से चला, और मैं केवल निफ्टी की बात कर रहा हूं, लगभग 11% की गिरावट हुई है. लेकिन क्या ये ऐसे ही रहता है? अब मैं आपको ले जाता हूं लगभग 23 साल पहले, जब पहला दूसरा इराक युद्ध हुआ था, तो 10% की गिरावट थी और 34 दिन के अंदर रही, लेकिन रिकवरी भी उतनी ही तेज रही. 13% रिकवरी हुई लड़ाई खत्म होने के बाद लगभग 37 दिन में. मोटे तौर पे एक दो और अगर इसका वो देखें तो ईरान और इसराइल के बीच पिछले साल जो
12 दिन का
जो युद्ध हुआ था 2025 में, उसमें अगर देखें रिकवरी की बात, तो लगभग 10 दिन के अंदर 2 या 3% की रिकवरी हुई और गिरावट जो है लगातार 4-5 दिन तक चली. रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ 2022 में जब शुरू हुआ तो लगभग 7% की गिरावट हुई 11 दिनों में, और अगले 10 दिनों में 9% की रिकवरी भी हुई. तो यानी कि ये बाजार है, ये समझना पड़ेगा. इसमें अगर सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहेंगे तो वो गिरावट दिखेगी, वो वॉलेटिलिटी दिखेगी, और अगर हम केवल आज, कल, परसों या 3 दिन या 4 दिन के नजरिए से देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी गिरावट हुई है. लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऐतिहासिक आंकड़ों की तरफ भी नजर डालें, यानी कि ज्यादा पीछे न जाएं, 20-25 साल तक ही चले जाएं, तो आप देखेंगे कि बाजार जितनी तेजी से गिरता है नेगेटिव सेंटिमेंट्स पे, उतनी ही तेजी से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पे उठता भी है. तो मेरा मानना यह है कि लगभग महीना भर तो होने को आया है, लेकिन जल्द ही इस संघर्ष की समाप्ति हो, कोई निष्कर्ष निकले, तो फिर उसके बाद जो रिकवरी है वो हमें देखने को मिलेगी. लेकिन ये कहना थोड़ा सा गलत होगा कि भाई अब रिकवरी के पाथ पे हम आ गए हैं, अगर एक दिन कुछ मामला बराबर हुआ है तो. वॉलिटिलिटी बरकरार जरूर रहेगी, लेकिन उससे चिंता करने की जरूरत नहीं.
लेकिन जो आपने विशाल जी आंकड़े बताए, तो हर बार इतनी ज्यादा गिरावट नहीं थी जो एक महीने में आपने बताया 23%.
हाँ, लगभग ये हम कह सकते हैं कि लगभग 10% के आसपास जो है 23-24 दिनों में गिरावट रही है, जो कि 23 साल पहले जो है जब दूसरा इराक युद्ध हुआ था तो उस समय गिरावट इतनी हुई थी, लेकिन वो लगभग 40 दिनों के आसपास हुई थी. तो ये थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि भाई एक इंटरनेशनल मार्केट सेंटिमेंट भी है और भी कई फैक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल यही एक फैक्टर है और केवल यही एक लड़ाई नहीं चल रही है. दूसरी लड़ाई जिसकी हम बात कर रहे थे रशिया यूक्रेन के बीच, वो भी चल ही रही है. और उधर अगर कैरेबियन में देखें तो जो अमेरिका के उधर जो कदम रहे हैं वो भी कोई बहुत अच्छा, और इससे ठीक पहले
क्यूबा वेनेजुएला
और इससे ठीक पहले जो टैरिफ को लेकर जो दबाव, जो प्रेशर बना हुआ था मार्केट्स पे और इन्वेस्टर्स पे, वो भी अभी उसमें भी संशय की स्थिति बनी हुई है.
और चलते हैं रुपए का हाल जानते हैं. भारतीय मुद्रा बाजार आज गुड फ्राइडे के चलते बंद रहा. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.98 पर कारोबार कर रहा था. आज हालांकि बाजार बंद था, लेकिन विशाल जी आप वही बात
बिल्कुल
यहाँ भी रुपए पे प्रेशर बना रहेगा जब तक की चीजें ठीक नहीं होती,
और बिल्कुल बना रहेगा। और इसमें भी अमरीश जी एक छोटा सा अगर हम मोटे से छोटा मोटा सा एक आंकड़े पे नजर डालें कि रुपए पे जो प्रेशर बना हुआ है वो लगभग अगर हम आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो 2.3% के आसपास की गिरावट है। अब आप इसी को जो है ब्रिटिश पाउंड से देख लीजिए, उसमें 2% की गिरावट है, और अगर हम देखें यूरो का देखें तो उसमें भी लगभग 2.4% की गिरावट है। जापानीज येन में 2.2% की गिरावट है, मलेशियन रिंगिट में 3.3 की है, रशियन रूबल में 4.2 की है, साउथ कोरियन वॉन में 5.1 की है। तो मतलब देखिए हर करेंसी अपने तरीके से बिहेव कर रही है, और जिस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं या जिस तरह के फंडामेंटल्स की हम जब अपनी अपनी अर्थव्यवस्था के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, और एक थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट भी आना कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात करें तो हम डिपेंडेंट जरूर हैं इंपोर्ट पे, मेजरली डिपेंडेंट हैं, लेकिन जो बाकी हमारी इकोनॉमी है वो उसको कहीं कहीं क्रचेज की जरूरत नहीं है, और इस सिचुएशन को जितने बेहतर तरीके से संभाला और जितनी जल्दी संभाला जा सकता है उसकी कोशिशें लगातार जारी है।
विशाल, यू नो टेकिंग दिस डिस्कशन ऑन द रूपी फर्दर, वी सॉ यस्टरडे द रूपी रिकवर्ड बाय ऑलमोस्ट बाय 171 paisa और 1 rupee 71 paisa, एंड दिस इज यू नो द बिगेस्ट सिंगल डे गेन इन ऑलमोस्ट ओवर अ डेकेड। सो हाउ बिग what do you say, I mean the steps taken by the RBI in the last couple of days, how important, how significant have those steps been in curbing this volatility, because we were seeing a huge volatility in the rupee, you know, before that?
Well, Reserve Bank of India, you know, if you look at the previous incidents as well and previous such situations as well, all the central banks, it's not just RBI, for other currencies as well, but now that we're talking about our own currency and RBI, this is the job of the central banks to you know work behind the curtains to quietly you know ensure that the dust is settled down, to ensure that the currency is not on a bumpy road, because if it's too much of a bumpy ride for the currency of that particular country, then of course it will have a negative impact on the overall monetary situation and the overall economic growth as well. Yes, it is acceptable to a certain extent. It is not that the central banks, and specifically in our case RBI, always had that clenched fist. No, it does not, but then it can't let go of it, the currency movements completely, and that is why small interventions keep on coming time and again. What we saw yesterday is a culmination of what RBI had been intervening,
yes,
in small measures for quite some time now, and there was an additional positive aspect of the fact that although when the day started, both the markets and the currency started on a low note,
yes,
but in the day they gained the momentum because there were indications coming in, and there was some positive hope yesterday as well that okay, fine, you know, there are some things moving positively, but largely it is to be attributed to what the central bank, that is RBI, has done with small moves and some big ones as well in the past 2 weeks, I would say.
Right. Let's move on to the next item. Industry bodies have welcomed the government's decision to grant customs duty exemption on a wide range of critical petrochemical products. Talking to media, CEO of the Federation of Automobile Dealers Associations, Sahesh Damani, said that this is a preemptive step by the government, providing relief for the auto sector.
I think this is a sensible preemptive step. For the auto sector, the benefit is not about price cuts and more about keeping the component and materials pipeline stable. Since many automotive parts depend on petrochemical derivatives like plastics and polymers, this exemption can help contain supply disruptions and cost pressures. For the auto retail, that means better continuity in vehicle, spare and consumable availability during an exceptionally volatile global situation.
Meanwhile, the national president of the Indian Drug Manufacturers Association, Dr. Viranchi Shah, said that waiving import duties on key solvents and chemicals used in API and formulation manufacturing will help curb recent price escalation.
The government decided to waive off the import duties in many of the solvents and chemicals. Many of these solvents and chemicals were widely used in the manufacture of APIs and formulations in India. With this reduction, it will curtail the escalation of prices that was happening for a couple of weeks from now. This will therefore enable the Indian pharmaceutical industry to ensure the availability of affordable medicines across India. On behalf of the Indian Drug Manufacturers Association, I compliment the Honorable Prime Minister and the Government of India for taking such a wonderful step.
और भारतीय फार्मास्यूटिकल निर्यात संवर्धन परिषद फार्मेकिसिल के अध्यक्ष नमित जोशी ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पर सीमा शुल्क में छूट देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि ये दवा आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
सरकार ने एक बहुत बड़ी सुविधा प्रदान करी है। इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती थी इस मटेरियल को इंपोर्ट करने में, तो अभी शॉर्टेजेस हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि आप शॉर्टेजेस को कवर करिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से, दूसरा वही सॉल्वेंट जो रिक्वायर्ड हैं इंडिया के लिए उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट जब भी हम करते हैं उसमें एक ड्यूटी कंपोनेंट होता है जो 7.75% प्लस 10% से 7.75% है, जो 8.25% की टोटल ड्यूटी बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है सारी इंडस्ट्री के लिए कि अब वो इंपोर्ट कर सकते हैं और ड्यूटी का वेवर ले सकते हैं।
इस बीच इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क छूट और माल ढुलाई सहायता से मरीजों को दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए रखने और वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद नागरिकों को मूल दरों पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की सराहना की। विशाल जी, आप क्या कहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो सीमा शुल्क को में सरकार ने छूट देने का जो फैसला किया है।
जी बिल्कुल, देखिए पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स अमरी जी बहुत ही महत्वपूर्ण फीड स्टॉक है कई सेक्टर्स में, चाहे हम ऑटो सेक्टर की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, और लगभग 40 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे सरकार ने जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको एग्जेम्प्ट किया है 30 जून तक का। इनमें मेथनॉल हो, स्टाइरीन हो, डाइक्लोरोमिथसिन हो, तो क्या है कि ये नाम बड़े सबको याद रहने वाले नहीं है और सबका ध्यान भी नहीं रहता है, लेकिन पैकेजिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और प्लास्टिक्स में, फार्मास्यूटिकल्स में जो चीजें बनाई जाती हैं उनमें ये एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। जैसा कि अभी हमने सुना एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से भी कि अगर आप डोमेस्टिकली इसको सप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने पे ड्यूटी लगेगी, यानी कि कस्टम्स ड्यूटी लगेगी, तो उसकी कीमतें बढ़ेंगी, और ऑलरेडी जो सप्लाई चेन सिस्टम है अगर इस पे देखें तो उस पे फिर दबाव जो थोड़ा सा बना हुआ है वो और ज्यादा दबाव बनेगा। तो ये सरकार ने, मैं कहूंगा कि सीधे तौर पर अपना कर्तव्य निभाया कि भाई इस वक्त स्थिति थोड़ी सी नाजुक है बाहर सप्लाई चेन को लेकर, तो निश्चित रूप से जो आपका सप्लाई चेन है उसको ठीक करने के लिए ये जरूरी है कि भाई आपको राहत मिले, और 30 जून तक, यानी कि अभी हम अप्रैल में हैं, सरकार ने सीधे सीधे 3 महीने का समय दिया है और उम्मीद ऐसी है कि उससे पहले ही सप्लाई चेन स्टेबलाइज होगी, मिडल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है, मध्य पूर्व में, वो खत्म होगी, तो इन सेक्टर्स पर जो प्रेशर बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा। और ये देखिए कि ये बड़े क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, चाहे हम ऑटो की बात के अलावा ऑटो देखें, प्लास्टिक्स है, पैकेजिंग है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है, अंततः ये इनके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो आम कंज्यूमर के लिए बहुत सारे हैं, उनकी चेन उनकी ऑफरिंग बहुत सारी है, तो उसमें अगर कमी कहीं आनी शुरू हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ होने का अंदेशा है।
Let's move on to the next item. The center has asked the states and union territories to take necessary action to curb malpractices such as hoarding and black marketing of LPG and other petroleum products. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Dr. Neeraj Mittal, has written a letter to all states and union territories in this regard. He said that rumors and misinformation continue to circulate in certain areas, leading to avoidable public concern and instances of panic buying. Dr. Mittal said that only 17 states and union territories are presently conducting regular or intermittent press briefings. They have been asked to step up proactive and regular public communication to ensure timely dissemination of accurate information through social and electronic media. The ministry has said that all refineries are operating at high capacity with adequate crude inventories in place and sufficient stocks of petrol and diesel are being maintained.
Aur LPG se judi hui ek aur khabar, Pashchimi Asia Sangharsh ke vaishvik urja bazaron par प्रभाव के बावजूद भारत में एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त बनी हुई है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि उसने रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी है और वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 28 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित कर रही है। ये वितरण मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के शुरू होने से पहले के सामान्य स्तरों के अनुरूप है।
विशाल, इफ यू लुक एट यू नो दिस ऑफ कोर्स द टू स्टोरीज दैट वी हैव जस्ट रेड यू, द सेंटर आस्किंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू टेक स्टेप्स बाय द सोशल media and regular press briefings so that you know there is right information going into the public domain that you know there is no such shortage. And then the other story about you know India's LPG supply is very stable, what the government is saying that, and we've seen it, if you look at it, you know, overall, if I give a perspective, an overall perspective, the fact that the government has reduced your or you know slashed the excise duty on petrol and diesel by 10 rupees, the fact that it has you know increased it has imposed export duty on diesel and aviation turbine fuel, and also it has you know allowed special economic zone units to sell in domestic tariff areas at concessional duty. Overall, if you look at the bigger picture, how important is it that the government, the steps that the government is taking right now?
Well, it is really, really important and significant to understand that the points which you mentioned in terms of, you know, slashing
excise duty
and, of course, increasing the duty on export as well. Now, those are done to ensure that the first stage in the supply chain is taken care of, and also to ensure that you know the extra burden of the increased oil prices, because they've gone up by around 40% in the international market, if not more average, if we look at that burden should not be passed on to the consumer. That's one. But two, when we're looking at the LPG and the gas you know supply chain situation, then we need to understand this, that there are other steps which were taken as well. For example, first step which the government took was to go ahead and you know slash the quota for the commercial use, because the government very clearly said that the focus has to be on key sectors apart from the domestic consumption. Then there'll be key sectors like health, education, yeah, institutions and so on and so forth. So the idea is simple. When there is, of course, you know, the supply chain is under stress, you know, from the Middle East, so we, just like every other country, yes, we will also feel that heat. But in that situation, there are certain, you know, measures which are taken, and those are gradient measures. And the first and foremost is that you deal with what is important.
Yes.
So the important is supply to the to all the houses, that is, yes, the domestic segment. Then supply to the emergency services like hospitals, supply to other important institutions like the educational institutions as well. And that is where the focus is. There is, of course, and also the central government is doing this in tune with the state governments as well. So there might be some bits and pieces of I would say not shortage, but bits and pieces of gap in terms of communication or the time gap. That is something which will be addressed by respective machineries. But largely, by and large, there doesn't seem to be that particular case. And that is because from day one, the steps have been taken. Now, it is important that we continue to maintain the supply,
yes,
which we're getting from outside, because this is something which we don't produce here in the country. And
when that's affected, you know, that's dependent on a lot of external,
exactly,
factors.
Lot
so
external,
the government is doing what it can, at, you
exactly
know, so, at its
so
own end.
Depending upon how much is the pressure on the supply chain,
right,
internationally.
Right. Let's move on to the next story. The first Deputy Prime Minister of Russia, Denis Manturov, concluded his two-day visit to India today. During his visit, Mr. Manturov held a bilateral meeting with External Affairs Minister Dr. Jay Shankar in New Delhi. The Ministry of External Affairs informed that both sides held wide-ranging discussions focusing on trade, industry, energy, fertilizers, connectivity and mobility, in addition to new opportunities in technology, innovation and critical minerals. The two sides also reviewed the progress on the implementation of the various outcomes of the 23rd India-Russia Annual Summit held in December last year. And both sides further exchanged views on regional and global developments, including the conflict in West Asia. Vishal, in this particular context, you know, what is also important is that Russia has, you know, the First Deputy Prime Minister noted that by the end of 2025, Russia had increased supplies of in-demand mineral fertilizers to India by 40%. And Russia has also confirmed that the Russian companies have the capacity to steadily increase supplies of oil and liquefied natural gas to the Indian market. How do you see these two developments, especially in the present context?
Well,
this assurance coming in from...
It is indeed really important because, around a month ago, we had... decided not to import oil from Russia anymore.
Yes.
And curtail it down to a certain extent, but that was part of negotiations, trade negotiations, all that, which are still hanging in balance because a lot of developments have happened in both United States and the globe and globally as well. Later on, depending on the situation, we again started importing from Russia, and that window, though it was only for a month, but between that period, the Russian Deputy Prime Minister coming here and then assuring that yes, there is adequate supply of not only the petroleum products but other minerals as well. This is really important. Because, and let's not forget that we have a very long standing and very, very, very fruitful relationship with Russia. So this can be considered as a sort of a stamp on that relationship that,
right.
Okay, come what may have happened or what might happen, we still stand together with each other.
और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 में किए गए सुधार कानूनों को सरल बनाने, व्यवसाय और व्यक्तियों पर कानूनी नियमों, सरकारी नीतियों और कर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समय, वित्त और प्रशासनिक दबावों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
Let's take the next story. India's foreign exchange reserves witnessed a decline of around $10.29 billion, reaching over $688 million for the week ending on 27th of March, due to a decrease in foreign currency assets, or FCA. According to the Reserve Bank of India, FCA, which forms the largest component of the reserves, dropped by $6.6 billion to around $551 billion during the week. Meanwhile, gold reserves tanked around $3.6 billion to $113.52 billion. The central bank's position in the International Monetary Fund also edged down by $17 million to $4.81 billion. In contrast, the special drawing rights increased by $17 million to almost $18.65 billion.
और देश के सी फूड निर्यात में पिछले 11 वर्ष में औसतन 7% की वार्षिक दर से मजबूत और निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है. मत्स्य पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्रालय ने कहा कि इस अवधि के दौरान सी फूड का निर्यात दोगुने से भी अधिक हो गया है, जो वर्ष 2013-14 में 30,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है. विशाल, आप क्या कहेंगे, क्योंकि सी फूड के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत की तरफ से है.
देखिए, ये इसे जो हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं उसका हिस्सा इसे मान के चला जा सकता है, क्योंकि सी फूड की जब हम बात करें, सी फूड के उत्पादन की, तो केवल वो कंजम्पशन के लिहाज से नहीं देखा जाएगा, कुछ एक्सपोर्ट के लिहाज से भी देखा जाएगा. और हमारे तो कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पे स्टेपल डाइट भी सी फूड में आती है, और हमारे कई सेक्टर्स, मतलब जो है कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आजीविका भी इस पर निर्भर है. तो इसका जरूर पॉजिटिव इफेक्ट ही होना है.
एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट विशाल, आई जस्ट वांट अ वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू. नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी द आरबीआई बाय मंथली एमपीसी मीटिंग. व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस इन द प्रेजेंट सिनेरियो?
Well, quite difficult, but I would say, if you want me to stick my neck out, and since you're asking in the last 60 seconds or so, I would say perhaps RBI will hold it for the time being.
Right. Thank you, sir.
चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. विशाल जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद.
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. मेजर एशियन स्टॉक मार्केट्स डिस्प्ले मिक्स्ड ट्रेंड. इंडस्ट्री बॉडीज हेल गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एग्जेम्प्ट क्रिटिकल पेट्रोकेमिकल्स फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी अमिड वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट. एंड सेंटर डायरेक्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू कर्ब होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग ऑफ एलपीजी एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा. फ्रॉम नाउ, फ्रॉम द एंटायर टीम, Goodbye. नमस्कार.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.